Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Aradesh Chaitangaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Bhagavad Bhaktajan, Shvetashvatara, Rishi Pranita, श्वेताश्वतर उपनिषद का स्वाध्याय आप कर रहे हैं। कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय शाखा में यह उपनिषद विद्यमान है। इस उपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय मंत्र के कुछ अंश भाष्य का अनुचिंतन करना है। तत्पश्चात आगे के ग्रंथों का अन्वेषण होगा। भगवत भक्तजन, संसार है चित्त का ही पसारा हुआ, चित्तमेव ही संसार है। कल हम लोगों ने विचार किया, वेदांत की साधना है चित्त को शोधन करते हुए उस अद्वैत आत्म स्वरूप का अनुभव करना। इस चित्त में जो संसार है और चित्त के कारण जो संसार है, परस्पर यह दो को न समझ करके एक को ही अगर कहे चित्त त्याग, तो फिर संसार का त्याग संभव है। कई बार हम ऐसा विचार करते हैं कि संसार को हटा देंगे तो परमात्मा का दर्शन अथवा आत्मानुभव प्राप्त कर लेंगे। जब तक चित्त है तो फिर संसार को आप रोक नहीं सकते। जैसे जब तक कांटा है मन में जीव हत्या करने की एक ललक, एक वासना जागृत हो सकता है। इसीलिए आचार्यों का निश्चय है चित्त त्यागो ही संसार त्याग, और तब जाकर के कह रहे हैं मुमुक्षा मोक्षम प्रति इच्छा। इसीलिए भगवत भक्तजन, मुमुक्षा माने क्या है, अर्थ क्या है, मोक्ष की इच्छा। और वो मोक्ष की इच्छा, मोक्ष मिले तो क्या मिलेगा, समस्त अनर्थ की निवृत्ति। मोक्ष मतलब क्या, समस्त अनर्थ की निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति, ये दो चीज है। प्रथम निश्चय क्या कर रहे हैं, मोक्ष के लक्षण कोटि में दो भाग है, परमानंद प्राप्ति अंतिम में है। प्रथम चरण में क्या है, समस्त अनर्थ की निवृत्ति। जब तक बुद्धि में अनर्थ प्रतिपन्न न हो तब तक हम इसको छोड़ेंगे। कितना लक्षण में ही, मैं वही सोच रहा था, कई बार हम लोग इसको रट डालते हैं, कहते भी है हजारों बार प्रवचन आदि में, कभी कभी क्लिक कर ले जाता है कि ये जो प्रथम कोटि में रखा है अनर्थ की प्राप्ति निवृत्ति, तो इसका मतलब है जब तक संसार में है, अंतकरण उपहित रूप से विद्यमान है, विषय भोगों की लालसा है, तब तक मोक्ष प्रति इच्छा नहीं हो सकती है। परंतु मोक्ष के लक्षण कोटि में जो रखा अनर्थ की निवृत्ति, तो इसका मतलब जिसके साथ है, जो जिस विषयों के साथ है, जिसको उठा करके रखे हैं, जिस भोगों के प्रति एक आकांक्षा है, लालसा है, वस्तु के प्रति हो, विषय के प्रति हो, व्यक्ति के प्रति हो, ये जो है ये सब के सब ब्रह्म के सिवाय सब अनर्थ है, ऐसा निश्चय हो। भाई अगर ऐसे हमें पता लगे कि ये हमारा अनर्थ करने वाले हैं अथवा अनर्थ, इसको आप सजा कर रखेंगे, चिपकेंगे इसके साथ? कभी भी नहीं महाराज। कितना भी आपको लगे कि इसको उठाने पर हमें करोड़ों की संपत्ति मिलने वाला है, अगर पता लगे ज्यों ही झपटा कि वो फूटा बम है, वो हम कभी भी बिल्कुल नहीं लेंगे। तो ये प्रतिपन्न यह बुद्धि में निश्चय हो जाए कि द्वैत जगत शब्द स्पर्श रूप रसमय जगत जो है, ये सब जिसके साथ उठना बैठना, जिसके संस्कार से संस्कारित हो करके, ये सब जो है अनर्थ है। यहां तक कि चित्त तक, अंतकरण तक, यहां तक अगर अनर्थ प्रतिपन्न हो, निश्चय हो, तो फिर वो साधक क्या चेष्टा करने वाले हैं कि भाई किसी भी तरह ये अनर्थ छूटे, मुझे क्या चाहिए और चाह की जरूरत नहीं, अनर्थ छूट जाए। चारों तरफ आग लगी है महाराज, कहीं भी, और जेठ के महीना है, कड़ाके के धूप है, गर्मी है, क्या तपास कर, क्या तलाश करेंगे आप कि थोड़ा कहीं हमको पानी मिल जाए, सरोवर मिल जाए, तालाब मिल जाए और वहां हम डूब जाए। बस जिस दिन ऐसा तीव्र इच्छा, नहीं तो इच्छा तो अभी भी है कि मोक्ष मिले, और इसीलिए हम प्रयत्न कर रहे हैं नारायण, उस प्रयत्न के प्रति जो इच्छा है, उस इच्छा की जो तीव्रता है, मृदु मंद और तीव्र, उस दिन आप कह रहे थे वो तीव्र, हम लोगों का अभी क्या इच्छा है अपना अपना विचार करके रख लीजिएगा, कहने की जरूरत नहीं है मुझे, तो मैं अपना कह सकता हूं, बिल्कुल मृदु है महाराज। कभी कभी तो लगता है कि नहीं इस मोक्ष के प्रति इच्छा, यही कभी कभी डाउट कि है असल में। तो वो जो तीव्र तर इच्छा है, वो इच्छा अगर हुई तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। रामकृष्ण के पास कोई गया, आप लोगों ने सुना होगा, मैं केवल स्पर्श टच करता हूं कि भगवान दर्शन हो सकता है, हम तो ग्रस्त है। बोला अच्छा तुम दर्शन करना चाहते हो, ला जाओ कल। वो बेचारा बोला, व्यक्ति आ गए, बोले कल देखो एक अच्छा तिथि है, गंगा स्नान करने चलेंगे, सुबह सुबह आ जाना। बोले अच्छा, अरे भाई मेरा भाग्य का उदय हुआ, एक तो गंगा जी, दूसरा संत के साथ स्नान, जाना चाहते ना संत, बड़ा खतरनाक है भाई। वो सुबह आया आकर के, और भाव से एकदम भाव से गदगद होकर के रामकृष्ण प्रतीक्षा करते आए, तो चलो नजदीकी था दक्षिणेश्वर, जाकर के गंगा जी भी डूब लगाया, वो भी बेचारा भाव से माँ गंगा गंगा करके डूब लगाया। इधर से रामकृष्ण उसके नीचे ही, पानी के नीचे ही उसको दबा दिए महाराज। पहले तो उसको पता नहीं लगा क्या हो रहा है, जब जबरदस्ती किया उठे तो देखा कि और ऊपर से दबाव बढ़ रहा है पानी के नीचे। अब जब दम घुटने लगा तो प्रयत्न किया, अरे ये तो छोड़ नहीं, तो किसी भी तरह एकदम कोई निरुपाय होकर जितना ताकत हो लगा करके ऊपर उठा। देखते कह रही ये रामक, यही तो बाबा जी ऊपर से पकड़ के रखा था। एकदम गुस्से से भर गए, बोले क्या है? बोले अच्छा बताओ कैसा लग रहा था। रामकृष्ण पूछते कैसा लग रहा था, बोला ये कोई पूछने का है, अरे मैं तो सोचा था कि संतों के साथ स्नान करने, ये तो मारने के, ये दम घुट रहा था, कैसा लग रहा था। बोला अच्छा दम घुट रहा था, बोला अरे एक श्वास लेने के लिए अभी तो प्राण ही निकलने वाला था, और मैं सोचा था कि पुण्य का उदय हुआ स्नान करने जाना। बोला बस तूने कल कुछ प्रश्न किया था, बोला हाँ भगवान कैसे दर्शन कब होगा, बोले बस जिस दिन ऐसा दम घुटने लगेगा संसार के विषयों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, वो दम सांस कहाँ मिलेगा, वही वो है तीव्रतम इच्छा, तीव्रतर इच्छा। इसलिए इच्छा इच्छा में फर्क है, डेली रूटीन भी शेड्यूल भी जैसा है ऐसा चलता रहे और महाराज दर्शन भी हो जाए तो भाई सीधा सीधा बोले तो भाई नहीं मिलने वाला है, साफ बोलने में कोई ये नहीं है, बिल्कुल नहीं महाराज। थोड़ा बहुत भी विषयों के प्रति इच्छा है, आकर्षण है, इसलिए तीव्रतर इच्छा है मोक्ष इच्छा। इसलिए मोक्ष इच्छा साधन चतुष्टय में अंतिम है और इस कारण यहां निश्चय कर रही वो मोक्ष के प्रति जो दृढ़ निश्चय है इच्छा है वो क्या है, समस्त लक्षण कोटि में क्या रखा, समस्त अनर्थ की निवृत्ति, और तब जाकर के आप परमानंद प्राप्ति। आप देखिए निवृत्ति होने के बाद परमानंद की प्राप्ति, और हम लोग जिस विषय को उठा रहे ले रहे उसमें क्या बुद्धि है, आनंद प्राप्ति की बुद्धि, दोनों में अलग ही है डेफिनेशन हम रखा है। और निश्चय क्या है भाई, शास्त्र क्या बतला रहे, हमें तो ऐसा लगता है इसको उठाओ ये विषय लो वो लो इसको सो रखो तो ये आनंद जो है चारों तरफ बिखरा हुआ है, अब कोई किसी भी वस्तु को विषय को उठाइए तो उसी में आनंद है। परंतु शास्त्र उपनिषद कह रहे सब त्याग करो, त्याग अमृतत्व प्राप्ति की साधन। और उपनिषद बारंबार वही निश्चय कराते हैं कि सत्य की खोज अगर करना हो तो वही व्यक्ति कर सकते हैं। आज जो प्रसंग है कि विषयों को, विषय ग्राहक इंद्रियों को, संकल्प विकल्प करने वाला मन को, ये सब के सब छोड़ करके बुद्धि की शुद्धि हो और तब जाकर के उस तत्व का चिंतन कर सकते हैं, समाधि लगा करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन उपनिषद बारंबार यही निश्चय बतलाते हैं, लक्ष्य को बतलाते हैं साधन के पहले, कि लक्ष्य पहले निश्चय हो जाए और उस लक्ष्य प्राप्ति के साधन को भी पहले जान ले, तब व्यक्ति उस उत्कृष्ट श्रेष्ठ राज तत्व को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। और इस उपनिषद में प्रश्न यही है कि कारण कौन है, कारण को लेकर के प्रश्न है, नाना प्रकार के कारणों को संग्रह करके निश्चय दिया कि कोई भी परिच्छिन्न सत्ता जड़ इस संसार के कारण नहीं बन सकते। अनेक जड़ों को संग्रह करके संयोग के द्वारा समुदाय को भी आप इस संसार के, इस सृष्टि के सृष्टा अथवा कारण नहीं मान सकते। तब जाकर के बताया आत्मा अर्थात अंतकरण विशिष्ट जो जीव है वो तो कारण हो सकता है। कहते महाराज कारण कोटि में आप इस जीव को भी नहीं रख सकते। कथम, प्रश्न किया क्यों भाई आप इस कारण में इस जीव को क्यों नहीं रख सकते, दो हेतु दे रहे हैं। वो पूरे भाष्य के जो निर्यास है बहुत पूरे लाइन याद नहीं रखना चाहिए, कर नहीं सकते, हेतु को रखना चाहिए कि मैं क्यों जगत के ईश्वर नहीं बन सकता। एक है अनिश्वरत्वम, चूंकि अनिश्वरत्व है इसलिए अस्वातंत्रम, दो हेतु दिया बस कि भाई आप ईश्वर नहीं है, ईश कर्तृत्व आप में नहीं है। क्यों ईश कर्तृत्व नहीं है? कहते अस्वतंत्रता। भाई कर्ता वो है जो स्वतंत्र है, परतंत्र व्यक्ति कभी भी कर्ता के रूप में सिद्ध नहीं हो सकते। इसीलिए कहते परतंत्र क्या है भाई, परतंत्रता किसमें है? जीव को जब देखते हैं उसमें तो लगता नहीं कि परतंत्र है। कहते परतंत्रता है सुख दुख हेतु। भाई आप चाहो अथवा न चाहो, सुख और दुख को आप प्राप्त करते हो। सुख और दुख को क्यों आप प्राप्त करते हैं, क्यों हम प्राप्त करते हैं? कहते हैं पुण्य और अपुण्य कर्म निमित्त। इसीलिए यहां देखिए लिखते हैं सुख दुख हेतु भूतस्य पुण्य पुण्य लक्षणस्य कर्मणो विद्यमानत्वात्। वो कर्म विद्यमान है पुण्य पुण्य, और उस कर्म के कारण आप जो है सुख दुख। इसीलिए ये जब हम देखिए ये उपनिषद ज्ञान के लिए ठीक है, परंतु जिस परिस्थिति में परिवेश में है इसको भी थोड़ा विचार करें तो बड़ा शांति कि अभी जो हमारे जीवन में दुख है, ये जो हमारे जीवन में कष्ट है, ये जो हम पा रहे हैं, तो इसके पीछे हम भले ही दूसरों को दोष दे कि हमारे कष्ट के लिए दुख के लिए ये कारण है वो कारण है ये कारण है, तो उपनिषद क्या बतला रहे? दुख के लिए कष्ट के लिए कौन कारण है? कितना बड़ा एक, हमको मोक्ष नहीं चाहिए भाई, संसार में है ना, तो संसार में तो झमेला है, कष्ट पा रहे हैं, तो हम दूसरों को न देखे न दे आरोप। ये कष्ट जो हम पा रहे भाई हमारा ही पूर्व में किया हुआ कर्म। थोड़ा सा चिंतन कीजिए, इतना दिल में ठंडक पहुंचता है, शांति मिलती है कि हम कितना भी कोशिश करें अन्य के लोग जो हमें अगर अपमान भी कर रहे हैं कोई, उस समय भी अगर ये बोध आ जाए कि मैंने किया हुआ था उसका रिजल्ट हमें मिला, फल मिल गया, और बस इतना निश्चय करके अगर मन मान लिया है, अंतकरण बिल्कुल स्वीकार कर लिया, तो फिर उसके बाद भगवान को धन्यवाद दीजिए कि भगवान आप हमारे एक कर्म का भोग दे दिए। यही पूजा है, यही स्तुति, और क्या करना क्या है? दिन भर आप सुबह शाम पूजा कर लिए और भगवान को सारा दिन भर कोसते रहे कि तूने ये नहीं किया, तूने क्या लाभ है? अगर कुछ करना नहीं, ये जो भोग हम पा रहे कष्ट पा रहे इसको प्राप्त करके भगवान को एक धन्यवाद दें। हमारा जो 100 मानव भोग था उसमें से अभी आज हमको 2 मिला, तो वो 2 के लिए कि 100 में से अपने 2 जो है भोग के द्वारा क्षय कर दिया, नाश कर दिया, अब मेरे पास 98, तो कम किया। कष्ट जो हमने पाया वो हमने अपने दुख को कम किया, बढ़ाया नहीं। इसलिए भगवत भक्तजन इतना तो है कि सुख दुख हेतु, और वो सुख दुख हेतु के कारण क्या है? पुण्य अपुण्य लक्षणस्य कर्मणो विद्यमानत्वात्, और ये कर्म के परवशत्वेन अस्वातंत्रम। कर्म के परवश है जीव, और इसीलिए यह जीव जो है अस्वतंत्र है, और अस्वतंत्र के कारण वो ईश नहीं बन सकते, अनीश है, और ये जो अनीश विशिष्ट है वो कभी भी श्रष्टा ईश नहीं बन सकते। स्वातंत्राच्च त्रैलोक्य सृष्टि स्थिति नियमे सामर्थ्यम न विद्यते एवत्यर्थ। इसीलिए महाराज अस्वतंत्रता के कारण त्रिलोकी की सृष्टि स्थिति और नियमन में कोई, नियमन शब्द के लय शब्द हम लोग परिचित है ना, नियमन मतलब भी कंट्रोल किया ना, लय, वो नियमन में भी इनका कोई सामर्थ्य नहीं है। एवत्यर्थ यही अभिप्राय है। अथवा सुख दुखादि हेतु भूतस्य आद्य आद्य हाँ, आध्यात्मिकादि भेद भिन्नस्य जगतो आनीशो न कारणम। महाराज, यह आत्मा, यह जो जीव है, सुख और दुख भूतस्य, सुख दुख के वो कारण है, और आध्यात्मिक आदि भेदों से जगत आध्यात्मिक भेद है, इसीलिए बेष्टि रूप से वो चूंकि अहम अनुभव करने वाला है, परिच्छिन्न रूप से बोध है, इसीलिए ऐसा जो परिच्छिन्न भेद विशिष्ट जो सत्ता है आध्यात्मिक शरीर वाला, वो महाराज भिन्नस जगतो अनीशा न कारणम, वो जगत के कारण। आध्यात्मिक शब्द के द्वारा यहां परिच्छिन्न को ले सकते हैं, बंधन विशिष्ट को ले सकते हैं, दुख कारण भोक्ता को ले सकते हैं। इसलिए आध्यात्मिक आदि भेद भिन्नस्य जगतो आनीशा न कारणम। इस प्रकार से द्वितीय मंत्र के द्वारा इस श्वेताश्वतर उपनिषद के जो प्रारंभ प्रश्न है, उस प्रश्न का समाधान ढूंढते ढूंढते ऋषियों ने, ब्रह्मवादियों ने यहां तक पहुंचे, परंतु कोई समाधान उनके हाथ में नहीं लगा। तो कौन है कारण? अब द्वितीय मंत्र का उच्चारण करते हैं। तृतीय, ते ध्यान योगानुगता अपश्यन् ते ध्यान योगानुगता अपश्यन्